ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारत मंडपम में आयोजित राइड एशिया ईवी एक्सपो में शामिल हुई। सरकार ने मॉनसून से पहले जलभराव, ट्रैफिक जाम सहित अन्य समस्याओं से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संस्कृति का पांचवा अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर विचारों और भाषणों का संकलन है और आज विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के वीरेंद्र नगर, चाणक्य प्लेस और महावीर एनक्लेव में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सड़क, सीवर और स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन संबंधी कार्य किए जाएंगे। आशीष सूद ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को 2 से 6 महीने के भीतर सीवर लाइन दुरुस्त करने और पानी की नई पाइपलाइन डालने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों तथा गलियों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा और बारिश से पहले सीवर तथा नालियों की सफाई की जाएगी। श्री सूद ने कहा कि 3 से 6 महीने में जनकपुरी के वीरेंद्र नगर, चाणक्य प्लेस और महावीर एनक्लेव में जमीनी स्तर पर बदलाव नजर आने लगेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत मंडपम में आयोजित राइड एशिया ईवी एक्सपो में हिस्सा लिया। ये एक्सपो भारत में पर्यावरण अनुकूलित इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी है, जो व्यापक बाजार जानकारी, बेहतरीन एक अवसर और नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राजधानी को देश में 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला शहर बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए राइड एशिया को बधाई दी और कहा कि पर्यावरण अनुकूल वाहन सिर्फ एक व्यावसायिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि वास्तव में देश के विकास का मार्ग इसी से होकर गुजरेगा।
पूरी एग्जीबिशन को मैं बधाई देती हूँ, पूरी टीम को, कि आपने एक एक्स्ट्रा सेक्टर चुना है जो सच में सिर्फ बिजनेस नहीं है। इसको सही मायने में मानिए तो देश की प्रगति का रास्ता इस फील्ड से होकर गुजरने वाला है। यही माध्यम बनेगा पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए।
ये प्रदर्शनी राइड एशिया ईवी एक्सपो का 6ठा संस्करण है, जो आज से 20 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में 300 से अधिक अग्रणी ब्रांड अपने नवीनतम उत्पाद और अभिनव तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य नई जरूरतों, प्रौद्योगिकी चैनलों और अन्य विकास द्वारों द्वारा संचालित बाजार के विकासवादी पथ को प्रतिबिंबित करना है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने नेशनल ट्रांसजेंडर डे वीक को लेकर आज ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को सम्मान से जीने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों, उनके सामाजिक समावेश और उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करेगी। श्री सिंह ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिकारों की सुरक्षा नियमों की अधिसूचना भी जारी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिव्यांग ट्रांसजेंडर को समाज कल्याण की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभाग की सभी योजनाओं के आवेदन पत्रों में थर्ड जेंडर का विकल्प अनिवार्य किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने आज इंजन गर्म होने या अन्य कारणों से सड़कों पर डीटीसी बसों के अचानक खराब होने की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इसमें 41 नवीन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सड़क के बीच में डीटीसी और क्लस्टर बसों के खराब होने की आवर्ती समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य यातायात पुलिसकर्मियों को बसों के खराब होने से उत्पन्न होने वाली यातायात स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और आसान बनाने के लिए बुनियादी कौशल से लैस करना था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मीडिया के साथ बातचीत में संयुक्त पुलिस आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस की 10 टीमों को इस मामले में जांच के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है।
हमारी करीब 10 टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं और अभी तक हमने कुछ लोग डिटेन किए, पूछताछ जारी है और जैसे ही व्यवस्था होगी तो बताएंगे।
इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले को लेकर पुलिस आयुक्त से जानकारी ली थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लोगों को इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का अद्वितीय बलिदान सदैव प्रेरणा का प्रकाश पुंज बना रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मॉनसून से पहले जलभराव, ट्रैफिक जाम और डार्क स्पॉट्स जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग सहित सभी विभागों के साथ बैठकें कर रही हैं। इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं जलभराव की समस्या को लेकर सरकार कई क्षेत्रों में पंप स्टेशन लगवा रही है और वहीं प्रमुख पंप स्थानों पर स्वचालित पंपिंग सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। श्री वर्मा ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक कुशल बनाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है।
पूरे दिल्ली, चाहे वो एमसीडी का एरिया है, चाहे वो दिल्ली कैंट का एरिया है, चाहे वो डीडीए के अंदर आता है, चाहे एमसीडी के पास है, सारे विभागों को बुलाकर पूरे दिल्ली की एक हमने चर्चा करी है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ में दिल्ली सरकार लगी हुई है कि किसी भी जगह पे पानी के भराव की समस्या इस मॉनसून में ना दिखाई दे।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज जल भराव की समस्या से ग्रस्त WHO रिंग रोड तथा मिंटो ब्रिज अंडरपास समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने मॉनसून के दौरान 194 इलाकों में जल भराव रोकने की योजना तैयार की है।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नालों की सफाई और जल निकासी की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉनसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी जल भराव से मुक्त रहे। उन्होंने कहा कि यहां स्वचालित पंप लगाए गए हैं जो भारी बारिश के दौरान पानी को बाहर निकालेंगे।
ऑटोमेटिक पंप अब यहां पे लगा दिए गए हैं कि एक लेवल पे पानी आते ही तुरंत वो जो पंपिंग स्टेशन है वो काम करना शुरू हो जाएगा और वो पूरा 2.5 किलोमीटर का एक पाइपलाइन छोड़ा गया है जिसको कि दूर ले जाकर के पानी को डाला जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नालों की सफाई और रखरखाव को कभी गंभीरता से नहीं लिया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड में है और हर जल भराव क्षेत्र के लिए समाधान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनता को किसी भी तरीके की असुविधा न हो। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रदेश सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन क्षेत्र में नागरिक हित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से रिहायशी इलाकों में खुलेआम मीट बेचा जा रहा है। श्री सिरसा ने कहा कि प्रशासन को आदेश दिया गया है कि अगले 24 घंटे में इस तरह की अवैध गतिविधियां बंद की जाएं।
अभी प्रशासन को आदेश दिया है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कानून के दायरे में आइए, अपना रेजिडेंशियल इलाके के अंदर मीट की दुकानें बनाकर भगाया जा रहा लोगों को, ये ऐसा नहीं हो सकता।
वहीं श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही रूपरेखा और रोड मैप जनता के सामने पेश करेगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस रोड मैप में मुख्य 5 बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। श्री सिरसा ने कहा कि हवा को साफ करने के लिए राजधानी के 13 स्थानों पर वाटर मिस्ट प्रणाली लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिक प्रदूषण वाले इलाकों की तराई के लिए 1000 वाटर टैंकर को काम पर लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से सटे प्रदेशों से आने वाले 10 से 15 वर्ष पुराने वाहनों वाहनों को कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके।
दिल्ली में जो व्हीकल बाहर से वाहन आ रहे हैं और 10 साल और 15 साल से उनकी उम्र ज्यादा है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली के जितने बॉर्डर्स हैं सभी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर कैमरा लगेंगे। ये कैमरा जैसे गाड़ी हमारे अंदर घुसेगी उसको तुरंत मैसेज आ जाएगा और उसको कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी वापस बाहर लेके जाइए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आज संस्कृति का पांचवा अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर विचारों और भाषणों का संकलन है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों को लिया गया है। इस पुस्तक का विमोचन जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने की। वहीं IGNCA अध्यक्ष राम बहादुर राय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की विषय वस्तु है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। ये दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान तथा संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दिवस हमें अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर गर्व करने के साथ साथ उनके संरक्षण का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि सभी को अमूल्य धरोहरों को संजोने और सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ना तो मंत्रालय और ना ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने कहा कि टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध बाधा मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा समय को कम करने के लिए चयनित टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित बाधा रहित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान टोल प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक और मौजूदा फास्टैग प्रणाली को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके तहत वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च क्षमता वाले ANPR कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से पहचान के आधार पर टोल शुल्क लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं। इस प्रणाली के प्रदर्शन दक्षता और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर देश भर में इसे कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दिन हमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और उदारता की प्रेरणा देता है। भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के हिस्से के रूप में अगले महीने एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS के लिए उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन AX-4 का हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार ने आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक अधिग्रहण के पद पर कार्यरत समीर कुमार सिन्हा को नागर विमानन सचिव नियुक्त किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशक के रूप में कार्यरत संतोष कुमार सारंगी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हल्के बादल छाए रहने, धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष शोध ने जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारत मंडपम में आयोजित राइड एशिया ईवी एक्सपो में शामिल हुई। दिल्ली सरकार ने मॉनसून से पहले जल भराव, ट्रैफिक जाम सहित अन्य समस्याओं से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संस्कृति का पांचवा अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर विचारों और भाषणों का संकलन है और आज विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।